ہے. ہرے کرشن. تو ہم لوگ اس سے پہلے کی جگن ناتھ جی کے رتھ یاترا کے بارے میں چرچا کریں. آج کیونکہ تروبھاو دیوس ہے, دو مہان ویشنو آچاریہ سوروپ دامودر اور شیوانند سین, ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم سنکشیپ روپ میں چرچا کریں گے. سوروپ دامودر ہم جانتے ہیں برج لیلا میں للتا سکھی ہیں, کئی بار وشاکھا سکھی بھی بتایا جاتا ہے لیکن مول روپ سے للتا سکھی جی ہیں. اور سوروپ دامودر جو ہیں چیتنیہ مہاپرو کے انترنگ پارشدوں میں سے ہیں. سوروپ دامودر رامانند رائے اور کون ہے سکھی مہیتی اور مادھوی, یہ ساڑھے تین انترنگ پارشد ہیں شری چیتنیہ مہاپرو کے. تو اس پرکار سوروپ دامودر نے بہت سہیوگ دیا شری چیتنیہ مہاپرو کو ان کی لیلاؤں کا ورنن کرنے کے لیے. شری چیتنیہ مہاپرو جگنناتھ پوری میں رہے 18 سال, اور ان 18 سالوں میں 6 سال انہوں نے سنکیرتن میں بھاگ لیا بھارت ورشی یاترا کی, اور جو 12 سال تھے ان کے جو آخر کے 12 سال ہیں وہ انہوں نے گمبھیرا میں بتایا. یہ سوانتے لیلائیں ہیں شری چیتنیہ مہاپرو کی, جہاں پر انہوں نے پورن آسوادن کیا مہابھاو کا. اور سوروپ دامودر رامانند رائے پرتیک دن کو ودیاپتی کے چنڈی داس کے اور جیدے گوسوامی کے دورہ لکھت گیت گوبند سے کئی ستیاں سناتے تھے, جس سے شری چیتنیہ مہاپرو اتی پرسن ہوتے تھے اور اپنا وپرلمب مہابھاو پرکٹ کرتے تھے. تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کا پریاس کریں گے جگن ناتھ پوری ہے گیا. خیر یہ چرچا ہم بات نہیں کریں گے, ابھی صرف سوروپ دامودر کا بتاتے ہیں آپ کو. سوروپ دامودر جو ہے اس پرکار سے سہیوگ دے رہے تھے مہاپرو کی لیلاؤں میں. اور سوروپ دامودر پہلے نودیپ میں تھے, ان کا نام پرشوتم آچاریہ تھا, اور بعد میں جب انہوں نے سنیاس لیا لیکن پھر بھی انہوں نے سنیاس ویش نہیں پہنا اور سادھارن شویت وستروں میں ہی رہے. سنیاس لینے کے اپرانت بھی جگنناتھ پوری میں رہے, اور بعد میں شری چیتنیہ مہاپرو نے ان کو ساتھ میں دامودر نام کی بھی اپادھی دی, اس طرح سے ان کا نام سوروپ دامودر پڑا. سوروپ دامودر جب تک انومتی نہ دیتے تب تک کوئی بھی اپنی کویتا کو نہیں سنا سکتا تھا شری چیتنیہ مہاپرو. تو ایک بار ایک بنگالی کبھی آیا اور اس نے مایاواد بھاشیہ پرستت کیا. سوروپ دامودر کئی لوگوں نے پرشنسا کی, بھکتوں نے پرشنسا کی, لیکن سوروپ دامودر نے اس کو سویکار نہیں کیا. سوروپ دامودر نے کہا کہ آپ جائیے بھاگوت پڑھو. کیا ہے بھاگوت پڑھو؟ بھاگوت پڑھو گیا بھاگوت ستھانے, ویشنو پاس کرو بھاگوت ادھیان. کہ اگر آپ کو بھاگوت سمجھنا ہے تو ویشنو کے پاس جاؤ, تو اس طرح سے آپ بھاگوت نہیں سمجھ پاؤ گے. تو چیتنیہ مہاپرو سے ملنے سے پہلے سوروپ دامودر روکتے تھے. تو سوروپ دامودر ایک طرح سے ان کے پرسنل سیکرٹری تھے شری چیتنیہ مہاپرو. تو اس طرح سے سوروپ دامودر جنگ گنڈیچا مندر مارجن, آپ نے سنا کل کتھا سنی ہوگی, اس میں بھی سوروپ دامودر کو کہہ رہے ہیں شری چیتنیہ مہاپرو لے جاؤ اس بنگالی ویشنو کو یہاں سے, میرے چرن دھو رہا ہے یہ مندر کے اندر جگنناتھ جی کے سامنے, یعنی جگنناتھ مندر میں. جگنناتھ جی تو آئے نہیں ابھی, ایک جگنناتھ یہاں گنڈیچا مندر میں سب کے سمکش جو ہے یہ مہا میرے چرن دھو رہا ہے یا اپرادھ کر, اس کو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ اپنے بنگالی ویشنو. تو پربھوپاد آتمن میں لکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی گھوڑیا ویشنو ہیں وہ سب سوروپ دامودر کے سب آشرے میں ہیں, وہ ہمارے پرمکھ ہیں, لیڈر ہیں سوروپ دامودر. تو اس پرکار یہ سوروپ دامودر جو ہیں اس پرکار مہاپربھو کو سہیوگ دیتے تھے ان کی لیلا. اور پھر شیوانند سین, شیوانند سین پرتیک دن پرتیک سال 200 بھکتوں کو, 200 سے ادھک بھکتوں کو بنگال سے لے کے آتے تھے, بنگال سے لے کے آتے تھے اور رتھ یاترا میں جگنناتھ جی کی رتھ یاترا میں بھاگ لینے کے لیے. تو شیوانند سین جب آتے تھے سبھی بھکت جو ہیں سب سے پہلے شری چیتنیہ مہاپرو کو ملنے کے لیے آتے تھے, جگنناتھ جی کا درشن بعد میں کرتے تھے. اور ایک سال کیا ہوا جب وہ آئے تو ایک کتا جو ہے ساتھ میں چل پڑا, اور وہ کتا جو ہے جب چلا شیوانند سین نے بڑی دیا دکھائی اور اس کتے کو بھی ساتھ میں ناؤ میں لے لیا. اور لیکن ہوا کیا, اس کے پیسے بھی دیے, اس کا فیئر بھی دیا اس کو بٹھانے کے لیے, اور بعد میں کیا وہ کتا جو ہے ادرش ہو گیا, کہاں چلا گیا پتا نہیں. شیوانند سین بہت چنتت ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے, انہوں نے 200 بھکتوں کو لگایا اس کتے کو ڈھونڈنے کے لیے. اور اس کے بعد پر جب شیوانند سین ढूंढते ढूंढते जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, निराश होकर, तो उन्होंने क्या देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से, अपने कर कमलों से उस कुत्ते को जगन्नाथ जी का नारियल प्रसाद खिला रहे हैं। हरी हरी। तो इस तरह से क्या हुआ, वो कुत्ते का उद्धार हो गया और कुत्ता जो है उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अयोध्या की कृपा करते हैं, है ना, पात्र है या नहीं है अपात्र, है ना, लेकिन जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा हो जाती है तो अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है। ये कृपा की शक्ति है, तो हमें बस केवल लगे रहना है। तो शिवानंद सेन जो है वीर गोपी हैं ब्रज लीला में, और राधा रानी की सेवा करती हैं, किस तरह से संदेशवाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में शिवानंद सेन जो है वो सेवा करती है राधा रानी की, वीर गोपी के रूप में। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त में आपको बताया हमने, वीर गोपी, वीर गोपी, वीर गोपी कह लीजिए, कुछ भी कह लो, वीर गोपी जो लिखा हुआ बताया। तो इस प्रकार ये रथ यात्रा में भाग लेने आते थे और काफी समय वहां बिताया जाता था जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेते थे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में हम लोग रथ यात्रा में भाग नहीं लेते हैं। कई भक्त जो है रथ यात्रा में भाग लेते भी हैं तो बीच में भाग जाते हैं जगन्नाथ जी को छोड़ के, अकेले माया से विरह होता है तो जगन्नाथ जी को छोड़ देते हैं बीच में। पूरा जगन्नाथ रथ यात्रा का जो उद्देश्य है कि हम लोग विरह उत्पन्न करें जगन्नाथ जी से और जगन्नाथ जी के रथ को खींचे, लेकिन होता क्या है कि भक्त जो है माया से विरह होने के कारण जगन्नाथ जी को छोड़ देते हैं ये दुर्भाग्य की बात है। तो विरह उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है, और प्रभुपाद ने कहा विप्रलंब जो भाव है, ये विरह का जो भाव है ये अति उत्तम है, मिलन से, संभोग से, फीलिंग ऑफ सेपरेशन को ज्यादा श्रेष्ठ बताया है, क्यों, यही कारण बनता है मिलन का। ये क्यों श्रेष्ठ है ये भी समझना जरूरी है, ये अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो विरह है आपको मिलन कराता है। अगर विरह के बाद मिलन ना हो तो ऐसे विरह का लाभ क्या, विरह का लाभ क्या। इसलिए जगन्नाथपुरी जो है विप्रलंब तट क्षेत्र है, पूरे जगन्नाथ रथ यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है, विप्रलंब भाव। जगन्नाथपुरी पूरा जो है विरह भाव से ओतप्रोत है। श्री चैतन्य महाप्रभु 12 साल गंभीरा में उन्होंने विप्रलंब भाव प्रकट किया, और ऐसा ऐसा भाव प्रकट किया जिसका वर्णन किसी शास्त्रों में नहीं मिलता है, केवल चैतन्य चरितामृत में मिलता है। ये एक ग्रंथ है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के विप्रलंब भाव के बारे में इतना विस्तार से वर्णन किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु रातों रात गंभीरा में रहते हुए इतने महाभाव उनका इतने उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता था कि वो उछल के दीवार से छलांग मार के जो है सिंह द्वार के सामने आके गिर जाते थे और वहां आकर कूर्म रूप धारण कर लेते थे, और या तो फिर उनका शरीर का आकार इतना लंबा हो जाता था कि शरीर के जो हाथ के बीच में जो जोड़ है या हाथ पांव के बीच में जो जोड़े हैं वो सब खुल जाते थे, उनके शरीर का आकार लंबा हो जाता था, उनके शरीर से गूस पिंपल्स निकलते थे, क्या कहते हैं गूस पिंपल्स को, जो भी कहते हैं, तो फिर रोमांच होता था, बाल खड़े हो जाते थे। ये दृश्य देखकर सब लोग भयभीत हो जाते थे, भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भयभीत हो जाते थे देखकर महाप्रभु के इस महाभाव के प्रदर्शन से, और उसका परिणाम क्या होता था, भक्त लोग भयभीत होते थे, भक्त लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु उठा के वापस ले जाते थे। इसी कारण से जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु हैं, निमाई नहीं है, क्योंकि वहां इस प्रकार के ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं वो। नवदीप में किसी को डर नहीं है निमाई से, निमाई के साथ सब खेल रहे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में इस प्रकार का महाभाव प्रकट करते हैं, ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं भक्तों में कई बार, तो इसलिए उनको महाप्रभु करके बुलाना पड़ता है। तो ये विप्रलंब क्षेत्र है। तो हम लोग पहले प्रारंभ में थोड़ा सा जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में भी सुनने का प्रयास करें और उसका जो तत्व क्या है उसको भी समझने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, सारा श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है कि प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे पृथ्वी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जा रही है। ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है पृथ्वी में जहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं मनाई जा रही हो। रशिया में कम से कम 50 शहरों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जा रही है। सारा श्रेय प्रभुपाद जी को जा रहा है और उनके शिष्यों को जा रहा है जिन्होंने प्रभुपाद जी को सहयोग दिया इस रथ यात्रा को सफल बनाने में। और भारत में तो उत्तरी भारत में सबसे अधिक रथ यात्रा होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये रथ यात्रा जो है बहुत प्राचीन उत्सव है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया है कि ये जो स्कंद पुराण में ये बताया गया कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्थापित है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह, ये स्वयंभू मनमंत्र में हुआ। स्वयंभू मनमंत्र में जो सतयुग का जो पहला भाग है उसमें ये जगन्नाथ जी जो है प्रकट हुए थे, और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, स्नान पूर्णिमा भी जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर जगन्नाथ भगवान की विशेष कृपा हुई महाराज इंद्रदुम्न के ऊपर, और महाराज इंद्रदुम्न ने जो है ब्रह्मा जी की सहायता से, ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की महारानी की जाए, श्री श्री राधिकरमान की जाए, श्री श्री कृष्ण राम की जाए, श्री श्री गौरताय की जाए, तो ब्रह्मा जी ने स्थापित किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, जो अभी वर्तमान मंदिर है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी का मंदिर जो है ये 11वीं शताब्दी में बना था। एक राजा हुए थे चौड़ गंगादेव, उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। उनके जो वंश थे, उनके वंश में और भी जो संतानें थे, उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो ये 11वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, लगभग 1100 साल पुराना ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। और इस प्रकार ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर की स्थापना हुई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्थापना हुई, आज से 15 करोड़ 34 लाख साल पहले हुई। स्कंद पुराण के अनुसार 15 करोड़ 34 लाख साल पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी पृथ्वी में प्रकट हुए स्नान पूर्णिमा के दिन, और फिर स्वारोचिष मनवंतर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, पहली रथ यात्रा मनाई गई थी। स्वारोचिष मनवंतर जो है हम जानते हैं, ये जो अभी चल रहा है ये वैवस्वत मनवंतर है, और इससे पहले भी और 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो स्वयंभू मनवंतर जो है वो पहला मनवंतर है। ध्रुव महाराज की कथा स्वयंभू मनवंतर की है। ध्रुव महाराज की कथा कब की है? स्वयंभू मनवंतर की कथा है। ये 7वें मंत्र मंथन में हम बैठे हैं तो इतनी प्राचीन कथा है। तो इस प्रकार जो है उसके बाद स्वारोचिष मनवंतर है, उसके बाद उत्तम है, तामस है, रैवत है, चाक्षुष मनवंतर है, उसके बाद अभी जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर है। इस तरह से आगे और भी 7 मनवंतर हैं, जो मिला के सब मिला के 14 मनवंतर बनते हैं। तो इस प्रकार ये भविष्य पुराण में भी दिया है और ब्रह्मवरत पुराण में दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी का जो आधा दिन जब बीत जाएगा, उनके 100 वर्ष हैं, उनके जब आधा उम्र में बीत जाएगी, उनकी आधी उम्र बीत जाएगी तो तब तक जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चले, यानी कि अगले 10,000 साल तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चले। उसके बाद 9 रथ यात्रा, उसके बाद अपने घर में बैठ के रथ यात्रा करो, आप कमरे में बैठ के खींचो, कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। संकीर्तनान 10,000 साल तक चलेगा भविष्य पुराण के अनुसार, ब्रह्म भारत पुराण के अनुसार प्रभुपाद जी ने भी भविष्यवाणी की है, संकीर्तन 10,000 साल तक चलेगा, और तब तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलेगी। तब तक गंगा जी और यमुना जी आपको दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद गंगा जी यमुना जी भी लुप्त हो जाएंगे, सरस्वती जी तो पहले से लुप्त हो गई है, सिर्फ बद्रिका आश्रम में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलेगी। इसका इतिहास मेटीरियल हिस्ट्री है वो इस प्रकार से, 3री शताब्दी में एक राजा हुए थे पांडे विजय। ये पांडे विजय के जो वो थे प्रीस्ट थे एक देवेश्वर, वो भगवान के बड़े भक्त थे, और जो पांडे विजय हैं वो अपना हमेशा उनसे कंसल्ट करते थे देवेश्वर ब्राह्मण से कि कैसे इस राज्य को चलाया जाए और सनातन धर्म की स्थापना किस तरह से की जाए। एक बार बुद्धिस्ट जो है वो आकर उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को उठा लिया, उठा के भाग गए, और फिर बाद में पांडे विजय जो है उसको उनके ऊपर विजय पाकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को वापस लाए जगन्नाथ मंदिर में, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को उन्होंने रथ पे बिठाया और नीलाचल से सुंदराचल ले गए। तो इस तरह से पहली रथ यात्रा जो हिस्ट्री के हिसाब से, मेटीरियल हिस्ट्री के हिसाब से है, वो इस प्रकार से 3री शताब्दी में ये ऐसी घटना हुई। इसलिए इस उत्सव को पांड्य विजय या पांडे विजय उत्सव भी कहा जाता है, और पांडे विजय उत्सव होता गया है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, विशेष रूप से जगन्नाथ और बलदेव जी को आगे पीछे इस तरह से झुलाया जाता है, आगे पीछे बैक एंड फॉर्थ, है ना, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इस तरह से जो आगे विजय आगे पीछे उनको हिलाया जाता है और उनको ले जाने का प्रयास किया जाता है, जगन्नाथ जी को बिठाने का प्रयास किया जाता है रथ पे, तो इसको कहते हैं पांडे विजय उत्सव। तो इस प्रकार ये पहांडी विजय उत्सव भी कहा जाता है इसको। तो इस तरह से इसके पीछे भी लीला है, लेकिन इतना समय नहीं है, लीलाएं बहुत सारी हैं। तो मदन मथ है जगन्नाथ जी, इंटॉक्सिकेटेड है कृष्ण प्रेम में और अपना हर्ष अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं कि अब जगन्नाथ जी के रथ पे अपने रथ पे बैठेंगे और सुंदराचल की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से उसे, खैर वो लीला अलग है, वो लीला यहां नहीं बता रहे हम, तो उस लीला में वो लीला अलग है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो हमारे गोस्वामी गण ने जो है लिखी है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी को उठाना बहुत मुश्किल होता है, सुबह समझ लीजिए 8 बजे लगभग जो है वो निकल के आते हैं बाहर, लेकिन रथ शुरू होने में कम से कम 3 बज जाते हैं, 2 या 3 बजे से पहले रथ शुरू ही नहीं होता। क्यों नहीं होता रथ शुरू से पहले? इसलिए नहीं होता है क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो रथ पे बैठते ही नहीं है। ये नहीं कि उनको जबरदस्ती बिठाया नहीं जा रहा है या कोई मार ड्रामा कर रहे हैं, नहीं, जगन्नाथ जी बैठते नहीं है, ये उनकी लीला है। तो इस प्रकार बड़े मुश्किल से बड़े प्रयास से सुभद्रा जी बैठ जाती हैं, बलभद्र जी भी बैठ जाते हैं, बलदेव जी भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी जो है वो इतनी आसानी से बैठते नहीं है। तो बैठते बैठते उसके बाद फिर भोग लगता है, पूजा होती है और ये सब करते करते जो है लगभग 2 या 3 बज जाते। तो ये जो है मतलब दिन है आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा नहीं क्षमा करिए आषाढ़ का महीना है और द्वितीय पक्ष और पुष्य नक्षत्र अगर होता है आज के दिन तो बड़ा ही पवित्र माना जाता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र नहीं हुआ, अगर आज के दिन यह नक्षत्र नहीं प्रकट हुआ, आज के दिन नहीं दिखाई दे मतलब उसका तिथि नहीं आए, तो फिर भी रथ यात्रा करनी होती है। तो इस प्रकार से ये स्कंद पुराण में अन्य पुराण में दिया है और उसमें यह भी सूचना दी गई है कि अगर समझ लीजिए जहां पर कोई जगन्नाथपुरी में नहीं है तो वो कैसे करेगा, तो समुद्र के तट पे जगन्नाथ जी के रथ को रोका जाता है और जगन्नाथपुरी में 10वें दिन जो है रथ यात्रा जो है वापस लौटती है जगन्नाथ मंदिर में और एकादशी के दिन जो है वहां पर जगन्नाथ मंदिर के सामने सिंह द्वार में वहां पर श्रृंगार किया जाता है, उनका विशेष श्रृंगार, इसको सोनार वेश कहते हैं, सोनार वेश पहना जाता है उनको। और इस सोनार वेश में ये बताया गया है कि कम से कम जो है कई टन जो है सोने उसमें लगे हैं, कई टन उसमें सोना लगाया गया है और इस प्रकार जो है उनको सोनार वेश में श्रृंगार किया। प्रत्येक महीना जो है हर महीने में अलग अलग श्रृंगार होता है और उसके बाद 12वें दिन जो है अगले दिन जो है फिर उनको मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो इस प्रकार बताया गया है और भी कई बातें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो दिन है ये नंदी घोष का दिन भी माना जाता है, इसको घोष यात्रा भी कहते हैं, घोष यात्रा भी कहते हैं। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसके 16 पहिए होते हैं और सनत कुमार संहिता में इसकी तुलना जो है वो किससे की गई है, इसकी तुलना जो है 16 एनर्जी से की गई है, इंटरनल पोटेंसी को 16 भागों में डिवाइड किया गया है। हम तो इंटरनल पोटेंसी को केवल सोचते हैं कि संधिनी संवित और लादिनी है, लेकिन और भी कई शक्तियां हैं जो इसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये 16 एनर्जीज हैं, 16 एनर्जीज हैं जगन्नाथ जी के जो रथ में जो पहिया है उसमें 16 स्पोक्स होते हैं और ये जो 16 स्पोक्स हैं इस तरह से होते हैं पहिए के बीच में, तो ये 16 जो स्पोक्स हैं ये 16 एनर्जीज हैं, इंटरनल एनर्जी हैं। तो बिना अंतरंगा शक्ति के जगन्नाथ जी लीला कर ही नहीं सकते। और इसी तरह बलदेव जी के रथ के पहिए में 14 स्पोक्स होते हैं, 14 स्पोक्स होते हैं। इसी तरह से सुभद्रा जी के जो रथ में के जो पहिए में जो है 12 स्पोक्स होते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी को बिठाया जाता है और भी कई इसमें डिटेल है आपको सुनाना चाहेंगे हम कि इसमें ये बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका जो रूफ है उसकी जो कैनेपी है वो लाल और पीले रंग की होती है, रेड और येलो का होता है और बलदेव जी का जो है उसको रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और ये लाल और हरे रंग की कैनेपी होती है, रेड और ग्रीन। और उसके बाद सुभद्रा जी का जो रथ है जिसको देव दलन कहते हैं 12 उसमें स्पोक्स होते हैं और ये लाल और काले रंग का होता है और इस प्रकार जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह हैं मदन मोहन जी, वो भी जगन्नाथ जी के रथ पर बैठते हैं, जगन्नाथ जी के रथ पर बैठते हैं। और फिर बलभद्र जी के रथ पे और दो विग्रह होते हैं जिनको राम और कृष्ण कहा जाता है, और सुभद्रा, हाँ इस प्रकार जो है ये, और सुभद्रा जी के जो रथ पे हैं सुदर्शन चक्र बैठते हैं, सुदर्शन चक्र होते हैं। तो इस प्रकार से लगभग जो है सात विग्रह जो होते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के साथ, वो जाते हैं गुंडीचा की ओर। तो नीलाचल से सुंदराचल तक, नीलाचल से सुंदराचल तक लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा है, और इस प्रकार से ये सारे रथ जाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से वर्णन दिया गया है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो हैं उनको बड़े मुश्किल से बिठा के, विशेष रूप से जो जगन्नाथ जी को बड़े मुश्किल से बिठा के उनको ले जाया जाता है सुंदराचल की ओर। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा इस्कॉन के भक्तों का कि शायद पिछले से पिछले साल पहली बार मौका मिला था जगन्नाथ जी के रथ के सामने संकीर्तन करने का इस्कॉन के भक्तों को, और बहुत सुंदर कीर्तन हुआ था। इसमें सोलन राधानाथ स्वामी महाराज ने लगभग 6 घंटे नृत्य किया था, लगातार 3 बजे से 9 बजे तक महाराज लगातार नृत्य करते रहे जगन्नाथ जी के सामने। और उसमें इंद्रदून महाराज, जो हमारे इस्कॉन के इंद्रदून महाराज है, उनकी बड़ी इच्छा हुई जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के रथ पर चले गए, बिना पूछे चले गए, और जगन्नाथ जी के पास चले गए, जगन्नाथ जी के सामने अपना मस्तक झुकाया तो एक पांडा ने देख लिया, और पांडा ने क्या किया, उनके सर को पकड़ा और बहुत जोर से जगन्नाथ जी के विग्रह पर मारा 2-3 बार, और ऐसा करने के बाद उनको पीछे धकेल दिया। तो ये विशेष कृपा हुई इंद्रदुन महाराज के ऊपर, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा हुई, उनकी कृपा, उनको कृपा प्राप्त हुई। तो हम ये बता रहे थे जगन्नाथ जी की जो लीला है ये बहुत विशेष लीला है जिसमें विरह भाव प्रकट होता है। और तो और प्रहलाद महाराज ने भी रेल रथ यात्रा की थी, भविष्य पुराण में ये दिया गया है कि कैसे प्रहलाद महाराज ने महाविष्णु के चतुर्भुज विग्रह को लेकर उन्होंने रथ बिठाया था और इस प्रकार से यात्रा करवाए थे और रथ को खींचा भी था। तो ये बहुत ही विशेष उत्सव है, और जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा की महिमा में कार्तिक महात्म्य में भी बताया गया है कि कार्तिक के महीने में भी रथ यात्रा करने का बड़ा महत्व है। और जगन्नाथ जी के रथ को कोई खींचता है, जगन्नाथ जी के रथ के साथ कोई चलता है, तो फिर वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है। ये बताया कि जगन्नाथ जी के रथ के सामने कोई चलता है, कई बार भक्त बोलते हैं हमारी कोई सेवा तो है नहीं, हम केवल चल रहे हैं, इससे अच्छा कि हम लोग वृंदावन जाएं। कई बार भक्त, कुछ भक्त ऐसे भी हैं वो रथ यात्रा में भाग ना लेके वृंदावन जाते हैं, वहां कुछ सेमिनार अटेंड करते हैं, या यहीं पर दिल्ली में कुछ सेमिनार्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब रथ यात्रा के महत्व का आज तक नहीं समझे। तो एक एक कदम जो हम चलते हैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने, हम सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करते हैं, एक एक जो कदम रखते हैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने। तो इतना सौभाग्य किसको प्राप्त होगा बताइए, जगन्नाथ जी इतनी आसानी से, जगन्नाथ भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर आ रहे हैं दर्शन देने के लिए, अगर हम छोड़ के भाग जाएं तो ये कोई विरह का लक्षण नहीं है, बल्कि माया से मिलन का लक्षण है। तो हमारी जो भक्ति है वो बढ़ रही है आगे नहीं बढ़ रही है, कैसे पता चले? अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा भक्ति डेवलप हो, हमारी अगर भक्ति डेवलप हो रही है, तो इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यह है कि हमें सेपरेशन फील होना चाहिए कृष्ण से। किसी ने पूछा था हमसे कि प्रभु जी जो महामंत्र का जप बताया गया है कि हमें बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, है ना, ये कैसे पता चलेगा कि हम अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं? बहुत सिंपल है, अगर महामंत्र का जप करते हुए अगर हमें माया से विरह हो रहा है तो इन अटेंटिव चैंटिंग है, अगर कृष्ण से विरह हो रहा है तो अटेंटिव चैंटिंग है। इसका सिंपल सा अर्थ, भले हम किसी भी मुद्रा में बैठे हैं, बैठे हुए या खड़े हुए, वो सारा एक्सटर्नल है। अगर हम केवल एक योग मुद्रा में बैठ जाएं कि हम एक ही जगह बैठ के जप करेंगे, ये इस केवल एक्सटर्नल सिम्टम है अटेंटिव चैंटिंग का। लेकिन इंटरनल जो सिम्टम है चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग का, वो ये है कि हाउ मच वी आर फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। अगर ये सेपरेशन फील ही नहीं हो रहा है हमें, तो फिर हम हरे कृष्णा करते रहें तो इसका मतलब क्या है, उसका कोई विशेष लाभ मिलेगा नहीं। जब तक जो है हम लोग इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन हम लोग उत्सव बनाते हैं। गुंडीचा मंदिर मार्जन उत्सव इसलिए बनाया जाता है कि हम मन को अपने मन को साफ करें। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को अगर हम रथ को खींचकर अगर गुंडीचा मंदिर ले जाना चाहते हैं तो हमारा मन तो साफ होना चाहिए ना, क्योंकि हम मंदिर में नहीं ले जा रहे, सबसे पहले अपने हृदय सिंहासन में ले जा रहे हैं। अपने हृदय सिंहासन में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को बिठा रहे हैं और वो बिठाने के लिए वो स्थान तो साफ होना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महापुरुष जब रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे प्रयाग में तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा निषिद्ध आचार कुटी नाती जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा ज्योत उपशाखा गण। ये सब उपशाखाएं हैं। एक उपशाखा का अर्थ क्या है जानते हैं आप? उपशाखा का अर्थ है कि मूल शाखा भी है, कभी रही होगी। अगर मूल शाखाएं नहीं है तो उपशाखा का मतलब ही नहीं है, फिर तो उपशाखा ही मूल शाखा है हमारी। आप समझे इस बात को? अगर मूल शाखा रही है तब तो उपशाखा है, अगर मूल शाखा ही नहीं है तो फिर जो उपशाखा है वही मूल शाखा है। बात सही कि नहीं? आप समझ रहे हैं? ये देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए माइक का स्टैंड है, ये समझ लीजिए मूल शाखा है और ये उपशाखा है। यहां उपशाखा का मतलब सब ब्रांच नहीं है, यहां उपशाखा का मतलब है कि जो वीड्स हैं, जंगली पौधा है, जो लताएं हैं जंगली, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं, देखने में लगता है मूल शाखा की तरह लगता है। तो ये उपशाखा, इसको तभी उपशाखा कहा जा सकता है जब कोई मूल शाखा रही होगी, यानी कभी हमने भक्ति की होगी थोड़ी बहुत, कभी हमारा आकर्षण रहा होगा श्रवण कीर्तन के प्रति, उसके बाद आकर्षण जब नहीं रहा, जब हम फंस गए इसमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा में फंस गए, तो फिर उपशाखा निकलती। लेकिन प्रारंभ से ही हम लोग इसी आधार पर भक्ति करते रहे हैं, निषिदाचार कुटी नादि जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण, अगर हम यही करते रहे शुरू से तो हमारी मूल शाखा तो कभी थी नहीं, जो उपशाखा है वही मूल शाखा है। अब बताइए है कि नहीं? शुरू से जिसको हम भक्ति सोचते रहे, भक्ति कभी की नहीं हमने जीवन भर, हम उप शाखा में बैठे रहे और उसी को वही हमारी मूल शाखा है। तो चैतन्य महापुरुष क्यों कह रहे हैं कि हम मंदिर मार्जन करना है, इन सब अनर्थों से छुटकारा पाना है मंदिर की सफाई करके, क्यों कह रहे हैं चैतन्य महापुरुष के? प्रथम ही उपशाखा कोरे छेदन तवे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। क्योंकि जब तक आप उप शाखा छेदन नहीं करोगे, ये जो मूल शाखा है वृंदावन जाएगी नहीं, ये रोक के रखा है देखो उसने ऊपर से, आप देख रहे हैं ये जाना चाहता है, ये मूल शाखा ऊपर जाना चाहती है, लेकिन यहां से ये आपने बना दिया अलग से एक्स्ट्रा, तो ऊपर कहां से जाएगी बताइए? आपने जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया आपने। प्रथम ही उपशाखा कोरे छेदन तब मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन, तब जो है मूल शाखा जाएगी वृंदावन, तब जाएंगे हम लोग सुंदराचल गुंडीचा मंदिर में प्रवेश कर, गुंडीचा मंदिर में हम लोग प्रवेश कर पाएंगे, तभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी वहां बैठेंगे, नहीं तो बैठेंगे नहीं, वृंदावन जाएगा ही नहीं वो शाखा। अगर वृंदावन पहुंच भी गए उपशाखा को लेके मान लीजिए एक्सटर्नली, तो वहां जगह क्या करेंगे? वहां यही करेंगे। अगर पहुंच भी गए हम लोग वृंदावन तो क्या करेंगे वहां जाके? निषिदाचार कोटि नाति जीव हिंसा ला पूजा प्रतिष्ठा जो तो उपशाखा गण, यही जाके हम ब्रज में करेंगे। लेकिन जो असली योग माया वृंदावन है वहां नहीं प्रवेश कर पाएंगे, महामाया वृंदावन में प्रवेश कर जाएंगे, लोई बाजार इत्यादि स्थानों में कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधे बने रहेंगे सैकड़ों सालों के लिए ब्रज में रहते हुए भी। ब्रज में रहकर भी भजन हो सकता है अगर हम लोग किसी वैष्णव का आश्रय लें गुरु की अनुमति के अनुसार, तब तो ब्रज में रहकर भी अनर्थों की निवृत्ति होगी। ऐसा नहीं कि ब्रज में जाने से अनर्थों की निवृत्ति नहीं होगी, दिल्ली में अनर्थों से निवृत्त होकर ब्रज में प्रवेश करना है ये भी ठीक नहीं है बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नये दखिलम इति उपदेश सारम, श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। तो आपको एक अनुरागी से एक वैष्णव के सानिध्य में रहकर आपको उसकी सेवा करनी होगी गुरुदेव की कृपा से। इसलिए धाम अपराध में भी पहले बताया गया है कि अगर हम धाम में प्रवेश करते हैं गुरु की अवहेलना करके तो पहला धाम अपराध है, यानी धाम में प्रवेश करते ही हम अपराध करके प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके बाद कौन सी भक्ति होगी भगवान जाने। दस धाम अपराध में पहला धाम अपराध यह है कि गुरु की अवहेलना करके आप धाम जा रहे हैं, तो अवहेलना करके हम गुरु धाम में पहुंचे तो बाकी नौ अपराध तो आप उसके साथ ही क्रम में हो जाए। तो इस प्रकार ये यहां बताया गया है कि गुंडीचा मंदिर महार्जुन का ये तत्व है। और जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा का जो रथ की जो रथ यात्रा हो रही है उसका तत्व क्या है? उसका तत्व ये है कि हम लोग विरह महसूस कर रहे हैं, पिछले 15 दिनों में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पाया, आज जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा जी दर्शन कर रहे हैं दे रहे हैं, विरह की वेदना इतनी बढ़ गई है, अब रहा नहीं जा रहा है, जगन्नाथ जी कब आप दर्शन देंगे? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आते हैं, बाहर आते हैं उस विरह की वेदना में और उस हर्ष उल्लास में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को हम ब्रज के भाव में जो है सुंदराचल ले जाना चाहते हैं, ये ब्रज का भाव है, है ना? तो इस प्रकार ये जब तक ये भाव नहीं आएगा हमारे अंदर, विरह की वेदना नहीं आएगी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ को खींच तो रहे हैं लेकिन कहां खींच के ले जा रहे हैं पता नहीं, हम एक्सटर्नल में भी एक्सटर्नल है, एक तो खींच के ले जा रहे हैं उनको बीच में छोड़ दिया, विरह की वेदना है नहीं, तो है क्या हमारे साथ? कुछ भी नहीं है, केवल उप शाखा ही है। तो इस और अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई भाव प्रकट किए, उस पर हम लोग गौर करें, यह विषय बड़ा लंबा है, एक कक्षा में होगा नहीं, आपको सहन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो श्रील गौर गोविंद महाराज ने बहुत सुंदर इसके ऊपर कथा की, प्रवचन दिया, श्रील गौर गोविंद महाराज ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में जिस प्रकार से समझाया है, जिस प्रकार से वर्णन किया है, वो अद्वितीय वर्णन है। श्रील गौर गोविंद महाराज के ऊपर विशेष कृपा थी जगन्नाथ भगवान की, और इसलिए हमेशा वो जगन्नाथ जी के तत्व के बारे में, उनके रथ यात्रा के तत्व के बारे में, गौर तत्व के बारे में, क्यों महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, इन बातों में बहुत विस्तार से वर्णन करते थे। तो उनकी कृपा से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में इसका वर्णन आया है, तो ये श्लोक इस प्रकार से, अन्य हृदयमान मोरो मान वृंदावन मने वने एको कोरी जानी ताहा तो मारो पदा दव्य करो यदि वाय तबे तुमान पूर्ण कृपा मानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा मन जो है वृंदावन से अभिन्न है, मेरा मन वृंदावन से अभिन्न है, हृदय और मन में कोई भेद नहीं है, मेरे मन में और हृदय में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मेरा मन वृंदावन है। आप क्योंकि वृंदावन को बहुत पसंद करते हैं, आपको वृंदावन से बड़ा प्रेम है, तो कृपा करके अपने चरणों को इस मन रूपी वृंदावन में आप स्थापित करिए। ये विरह की भावना पकड़ कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो जगन्नाथ जी के सामने संकीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु इतने भावावेश में आ जाते थे कि कई बार रथ के पीछे चले जाते थे और जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था, प्रतियोगिता होती थी, कॉम्पिटिशन होता था चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी के बीच में, लेकिन श्री चैतन्य महापुरुष अधिक शक्तिशाली दिखाई पड़े और जैसे ही रथ के पीछे चैतन्य महापुरुष पहुंचते जगन्नाथ जी का रथ वहीं पर रुक जाता और जगन्नाथ जी इंतजार करते कि कब महापुरुष सामने आके नृत्य करेंगे, और जैसे श्री चैतन्य महापुरुष जगन्नाथ जी के सामने आके नृत्य करते फिर से जगन्नाथ जी का रथ चलने लगता। हरि हरि तुम्हारो ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जने कभू नहीं भाई ब्रज भूमि छाड़ी ते नारे तुमानो देखिले मरे ब्रज जने की हबे उपाय। इस प्रकार से क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज के वासी हैं, वो आपको इस राजवेश में नहीं देख सकते हैं, आपको इन योद्धाओं के साथ संग करते हुए नहीं देख सकते हैं, और वो वृंदावन को छोड़ नहीं सकते हैं, और आपकी अनुपस्थिति को महसूस वो सहन नहीं कर सकते हैं, वो सब मर रहे हैं, वो सब शरीर छोड़ रहे हैं, और क्या बता रहे हैं फिर आगे, तुमी ब्रजे रजीवन ब्रज राजे प्राणधान तुमी ब्रजे सकल संपद कृपा कृपार तुम्हारो मान आसी जियो ब्रजजान ब्रजे उदय करो निज पान। अब इसका मतलब क्या है कि आप ही वृंदावन धाम के जीवन प्राण है, आप ही नंद महाराज के जीवन है प्राण है, आप ही वृंदावन धाम के एकमात्र ऐश्वर्य है, आप बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, कृपा करके आप आए ब्रज में निवास करें, आपने चरणों को वृंदावन में रखें। ब्रज की गोपियों का यही था भाव। ब्रजवासी जो है विरह की वेदना प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब कब वापस लौटेंगे पता नहीं। कई लोग आके बोल के गए आएंगे आएंगे, उद्धव जी आए थे वो भी बोल के गए, बलदेव जी आए थे वो भी बोल के गए आएंगे आएंगे, कभी नहीं आए। कहां आए वो, इतना विरह प्रकट कर रहे हैं कि राधाणी यहां तक कि वृक्षों से आलिंगन कर रही हैं, सोच के तमाल वृक्ष को देख रही हैं तो कृष्ण का स्मरण हो रहा है उनको। तो इस प्रकार से विरह की वेदना ब्रज के भक्त प्रकट कर रहे हैं। श्री चैतन्य महापुरुष जगन्नाथ जी का जब दर्शन करते थे तो किसका दर्शन करते थे, वो श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन करते थे। चैतन्य महापुरुष जब पहली बार आए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन उन्होंने किया ही नहीं था, जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वो मूर्छित हो गए। बलदेव सुभद्रा जी को देखा भी नहीं उन्होंने, उन्होंने केवल जगन्नाथ जी को देखा और क्या देखा, श्याम सुंदर कृष्ण को देखा, और देखते ही जो है वहीं पर गिर पड़े। चैतन्य महापुरुष कौन सा भाव प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण विरह विदुर, कृष्ण विरह विदुर, यानी कि कृष्ण से विरह का ये विदुर रूप है। और जब जगन्नाथ भगवान चैतन्य महापुरुष का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महापुरुष का दर्शन करते हैं तो क्या होता है, राधा विरह विदुर रूप, तो दोनों का ही विरह हो रहा है। तो जगन्नाथपुरी कौन सा स्थान है, इन दोनों के मिलन का स्थान है, जहां वो विरह की वेदना प्रकट कर रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं तो वो कृष्ण को देखते हैं, और जब जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो वो राधा रानी को देखते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण जब कृष्ण के लिए रोते हैं तो वो गौरंग महाप्रभु है, कृष्ण ही जब कृष्ण के लिए रो रहे हैं तो वो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु है। और जगन्नाथ जी जब चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं तो फिर उनको राधारानी का स्मरण हो रहा है, राधारानी को देख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे को देख रहे हैं, और क्या बताया जा रहा है, और क्या बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, क्वा कृष्णानंद मुरली रवा, क्वा कृष्णा सिखी चंद्रा अलांकृति, क्वा कृष्णा रास रास तांडवी। मतलब क्या है, नंद महाराज के जो ये जो चंद्रमा है, नंद महाराज के वंश के जो चंद्रमा है, इस नंद वंश के नंद कुल के जो चंद्रमा है वो कहां है, कहां गए वो, वो कहां है वो कृष्ण जो हमेशा मुरली बजाते हैं, कहां गए वो, वो कहां है कृष्ण जिनके मस्तक पे मयूर पंख है, मयूर पंख से सुशोभित है, कहां है वो कृष्ण जो रासलीला करते हैं, कहां है वो कृष्ण प्राण वल्लभ, मेरे जीवन के प्राण किधर गए वो। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है रोते हैं, महाप्रभु कंदन करते हैं, ये सब विरह का भाव है। उज्ज्वल अनिल मणि में ऐसे कई लक्षण बताए गए हैं, 10 स्थितियां बताई गई हैं विरह की, विप्रलंब के 10 स्टेजेस बताए हैं। श्री गौर गोविंद महाराज ने तो उसके ऊपर पूरा प्रवचन ही दिया था विरह के ऊपर जो 10 स्टेज उज्ज्वल निर्मणि से उन्होंने वर्णन किया, 10 जो विरह की जो स्थितियां हैं, पहला बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सारा, बहुत समय लगेगा इसमें। जो चिंता, चिंता का मतलब है थॉटफुलनेस, जागरहा वेकफुलनेस, उद्वेगहा एंग्जाइटी चिंता, मतलब ये एंग्जाइटी जो है इस प्रकार बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है उसको एंग्जाइटी कहते हैं। तनु क्षीणता, यानी जो शरीर जो है वो बिल्कुल स्किनी हो रहा है, पतला होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। मालिन अंगता का मतलब है कि शरीर जो है वो अब बड़ा मलिन हो रहा है, और शरीर का जो है रंग जो है वो हल्का पड़ गया है, फीका पड़ रहा है। प्रलाप, निरंतर बोलते जा रहे हैं, एक होता है विलाप, विलाप का मतलब होता है कि रोते रोते कोई बोले, जैसे विलाप कुसुमंजलि है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधारानी से विरह प्रकट कर रहे हैं, उस विरह की वेदना में बोलते जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं साथ साथ, उसको कहते हैं विलाप। और प्रलाप का मतलब होता है परलापहा का मतलब होता है कि इनकंसिस्टेंटली, यानी कि निरंतर बात करते रहे, उसको कहते हैं व्याधि, ऊंचा बुखार, बहुत तेज से बुखार, जैसे जगन्नाथ जी को बुखार होता है स्नान पूर्णिमा के बाद। क्यों बुखार होता है, नहाने के कारण नहीं, 108 घड़ों के द्वारा जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है, इस कारण से बुखार नहीं हो रहा है, ये गलत है। जगन्नाथ जी को बुखार होता है, जब उनको स्नान पूर्णिमा के लिए बाहर लाया जाता है और उनको मंच में बिठाया जाता है, वहां से जब वो सुंदराचल को देखते हैं, गुंडीचा मंदिर को देखते हैं, राधारानी का स्मरण होता है, ब्रज का स्मरण होता है, ये देखकर जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है, ऐसा महाराज बता रहे हैं। और फिर उसका उनका बुखार इतना बढ़ जाता है कि लोग उनको छू नहीं पाते। यहां जी की बार वैद्य जी आए तो उन्होंने जब जगन्नाथ जी के शरीर को छुआ तो तप रहा था उनका शरीर, जगन्नाथ जी का शरीर। और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी शरीर तप रहा है, जब 15 दिन उनको दर्शन नहीं हुए, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए और अलालानाथ की तरफ भागे, उनके तपते हुए शरीर में अलालानाथ का जैसे ही दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु वहां जमीन पर गिर गए, पृथ्वी पर जैसे गिरे वहां जो पत्थर था वो सारा का सारा पिघल गया, सब नहीं मतलब काफी भाग पिघल गया, वो अभी भी आप देख सकते हैं उसको। तो इस तरह से जो है ये बुखार, ये है प्रेम का बुखार। हम लोगों को बुखार होता है वायरल फीवर, हमें प्रेम का बुखार तो कभी होता नहीं है। तो ये सारे जो विरह की भावनाएं हैं ये भौतिक जगत में भी दिखाई पड़ती हैं, विकृत रूप में, विकृत रूप में दिखाई पड़ती हैं। उन्माद पागलपन, दिव्य उन्माद, राधा रानी जो है भंवरे से बात कर रही है, ये क्या है, दिव्य उन्माद का लक्षण है। और मोह, फेंटिंग, मोह का मतलब यहां पर है कि मूर्छित हो जाना, मतलब अचेत हो जाना और अंततः मृत्यु। तो ये प्रकार जो है ये अलग अलग स्टेजेस हैं विप्रलंब के, सेपरेशन के स्टेजेस बताए गए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे लक्षण जो है प्रकट किए वहां पर जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहते हुए, और जगन्नाथ जी के रथ के सामने भी कई प्रकार के लक्षण जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये विरह की वेदना यहां पर प्रकट की गई है। और आगे बता रहे हैं कुरुक्षेत्र में कृष्ण बलराम सुभद्रा जी पहुंचे थे, आप जानते ही हैं द्वारका से आए थे, और वसुदेव जी यादवगण जो हैं वहां पर सब पहुंचे थे। कृष्ण बलराम सुभद्रा जी रथ पर बैठकर वहां पर सिंहासन, रत्न सिंहासन था, मतलब मणियों से और रत्न से जड़ित सिंहासन था, बड़े ऐश्वर्य के साथ जो है वहां पर सूर्य ग्रहण के दिन पहुंचे थे। और ब्रजवासी भी वहां पर स्नान करने के लिए आए थे, राधा रानी भी आई थी, ये सब वहां पर मौजूद थे। और ये सब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, उन्होंने फिर कृष्ण बलराम जी के दर्शन किए। कृष्ण बलराम जी के जब दर्शन किए तो वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उनको ब्रज का स्मरण हो रहा था, राधा रानी को ब्रज का स्मरण हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने यह भाव प्रकट किया जगन्नाथपुरी में रथ के सामने, कोई समझ नहीं पाया, स्वरूप दामोदर केवल समझे और शील रूप गोस्वामी समझे। क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या भाव प्रकट किया, चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने एक हिंदी साहित्य से काव्य प्रस्तुत किया, मतलब कविता प्रस्तुत की, और ये सुनकर कोई समझ नहीं पाया कि क्या बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ये, लेकिन स्वरूप दामोदर समझ गए, रामन और रूप गोस्वामी समझ गए। और रूप गोस्वामी ने एक ताल के पत्ते पर श्लोक को लिख दिया कि चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को चांटा लगाते हुए बोला कि तुम ही रूप समझ पाए हो, मेरे भाव को कैसे समझ गया तुम। इस तरह से श्री रूप गोस्वामी, इसलिए श्री रूप गोस्वामी के बारे में बताया, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांति। श्री रूप गोस्वामी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जानते थे, ये है उनका मनोभिष्ट। क्या बोला श्री चैतन्य महाप्रभु ने, सुनिए पहले तो इसका हिंदी साहित्य में क्या दिया है ये सुनिए, कि उस व्यक्ति ने जो है मेरे हृदय को चुरा लिया, मैं जब युवावस्था में था और वही मेरे अभी मालिक है, मतलब युवावस्था में जब थी तो उसने जो है मेरा, उन्होंने मेरा हृदय चुरा लिया। और ये वही चैत्र मास की जो है चंद्रमा की रातें हैं, वही चंद्रमा की रोशनी अभी आ रही है, वही जो है मालती के पुष्प हैं, उनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है, और कदम के वृक्ष से भी जो है बहुत मधुर जो है वहां सर गंध आ रहा है, और हमारे इस आंतरिक संबंध में मैं वही प्रेमी हूं और आप वही हैं, लेकिन अब मेरा मन जो है यहां संतुष्ट नहीं है और मैं तो वापस वहीं जाना चाहती हूं, रेवा नदी के तट पर वेसेशी वृक्ष के नीचे, ये मेरी इच्छा है। तो स्वरूप दामोदर ने सुना वो समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं श्री चैतन्य महापुरुष, श्रील रूप गोस्वामी समझ गए। श्रील रूप गोस्वामी ने सुनकर जो है तुरंत श्लोक लिख दिया, और क्या लिखा श्रील रूप गोस्वामी ने, ध्यान से सुनिए, श्री रूप गोस्वामी ने लिखा, इसका अर्थ यह है कि आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूं, है ना, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूं, आप हम यहां फिर से मिल रहे हैं जैसे कि हम पहले मिले थे, हम वही के वही हैं, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, लेकिन मेरा मन तो वृंदावन धाम के प्रति आकर्षित हो रहा है ना? और मेरी तो इच्छा है कि आप अपने चरण जो है वृंदावन में रखिए। ये जो कुरुक्षेत्र है ये ऐश्वर्य से भरा हुआ है, यहां लोग जो है योद्धागण आए यहां पर आए हुए हैं और यहां सब आपके जितने भी सैनिक हैं मंत्री हैं सब आए हुए हैं, सबके पास इतना ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य जो है हमसे नहीं सहन होता है। आप चलिए वृंदावन चलिए, वहां पे देखिए भंवरे हैं, वहां पे निकुंज है, वहां यमुना जी हैं, वहां गिरिराज जी हैं, अब यहां क्या कर रहे हैं, इस ऐश्वर्य में कहां फंस गए आप, चलिए चलिए वृंदावन चलिए। ये रथ खींचने का भाव है, जगन्नाथ जी के रथ खींचने का भाव है, ये भाव जो है राधा रानी ने प्रकट किया। ठाकुर भक्ति विनोद के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर कहते हैं, भक्तिनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक बार भक्तिनोद ठाकुर ने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र जाना चाहता हूं और ब्रह्म सरोवर के सामने वहां भजन कुटीर बनाऊंगा। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर सोच में पड़ गए, भक्तिनोद ठाकुर जो है वो कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, उनको तो वृंदावन जाना चाहिए, क्यों वो भजन कुटीर बनाना चाहते हैं वहां पर कुरुक्षेत्र में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि वो वहां पर भजन कुटीर इसलिए बनाना चाहते हैं सेवा के लिए, क्योंकि जहां सेवा की आवश्यकता है वहां हमें जाना चाहिए। अगर गुरु कहें कि आप जाओ बहादुरगढ़ वहां गौशाला संभालो और पंजाबी बाग के ऐश्वर्य को त्यागो, तो उस सेवा का महत्व है। आप समझ रहे हैं इस बात, उस सेवा का महत्व है, ये नहीं कि हम लोग यहां ऐश्वर्य में ही फंसे हुए हैं और यही फंस गए सुविधाओं में, या द्वारका के ऐश्वर्य में जो हमारा राधा पारसारथी मंदिर है वहां फंस गए हम लोग, तो इसे फंसे हुए हैं और जाने के लिए तैयार नहीं है। आपका बिजनेस चल रहा है और पता चला कि घर में आग लगी हुई है, तो आपको घर छोड़ के आग बुझाने के लिए जाना चाहिए। तो राधा रानी जो है वीर की वेदना प्रकट कर रही है, असहाय अवस्था में है, उनको सांत्वना देने के लिए सेवा की आवश्यकता है, गोपियां लगी हुई हैं इसके लिए। और भक्तिनोद ठाकुर जो कि कमल मंजरी है, वो इसी भाव में जो है राधा रानी की सेवा में जाना चाहते हैं कुरुक्षेत्र, और वहां भजन कुटीर बनाना चाहते हैं। ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जो बताया वो आश्चर्य, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि वृंदावन में तो विरह की बात ही नहीं है, वृंदावन में तो राधा कृष्ण की अष्टकाली लीला हो रही है, वहां तो सब कुछ आनंद मंगल है। अरे सेवा की आवश्यकता तो वहां पे है, कहां पर, दिल्ली में। इसलिए हमारा जो प्रचार का कार्य है ये विप्रलंब सेवा है, प्रीचिंग इज नथिंग बट विप्रलंब सेवा, और इस विप्रलंब सेवा में, प्रचार की विप्रलंब सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से वृंदावन में मिलन होगा आपको राधारानी से। हरि हरि। लेकिन प्रचार के आंदोलन में नहीं रहेंगे और प्रचार के द्वारा विरह उत्पन्न नहीं करेंगे कृष्ण से, वृंदावन धाम से, श्रीधाम मायापुर से, तो कैसे मिलन हो पाएगा, कैसे जाएंगे आप नवदीप साल में एक बार। इसलिए विरह और मिलन जो है पूरे जीवन भर चलता रहता है एक साधक के जीवन में, और अंततः क्या होता है उसका परिणाम, विरह प्लस मिलन, अंत में मिलन। ये साधना होती है कि आप पूरे साल सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, और साल में एक बार नवदीप धाम की परिक्रमा करते हैं, जगन्नाथपुरी मायापुर इत्यादि जाते हैं, वो मिलन का समय होता है। फिर आते हैं फिर विरह होता है, फिर साल में एक बार जाते हैं फिर से मिलन होता है, फिर वापस दिल्ली आते हैं फिर विरह होता है, फिर आप वृंदावन जाते हैं फिर मिलन होता है, और जिस दिन तेज का परित्याग करते हैं उस दिन मिलन ही मिलन होता है। हरि हरि। तो जगन्नाथपुरी जो स्थान है वह विप्रलंब तट क्षेत्र है, वो विरह का स्थान है, यहां पर विप्रलंब भाव को जागृत करने का सर्वोत्तम स्थान है जगन्नाथपुरी। लेकिन सर्वोच्च स्थान फिर भी सीधा मायापुर है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में अष्टकाली लीला नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु की अष्टकाली लीला केवल नवदीप में होती है। लेकिन उस नवदीप में अष्टकाली लीलाओं में प्रवेश करने के लिए एक साधक को जगन्नाथपुरी के विप्रलंब भाव को जागृत करना पड़ता है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखलाया। ये रथ यात्रा का महत्व है। तो इस भाव से चैतन्य महाप्रभु जो है वो खींच रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ को, खींच रहे हैं, और जगन्नाथ जी के रथ को खींच के वो ले जाना चाहते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? सुंदराचल में ले जाना चाहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, सही ते प्राणनाथ पाइनू जहां लागी मदन दहने झूरी गेनू। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया है जो मेरे जीवन प्राण है, और वो नहीं रहेंगे तो फिर मैं जल के राख हो जाऊंगा, तितर बितर हो जाऊंगा मैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इतनी वेदना प्रकट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का ही भाव प्रकट कर रहे हैं, उस महाप्रभु उस भाव में जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। तो इस भाव से हम लोग भक्तों को सबको खींचना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में है क्या? वृंदावन में निकुंज है, वृंदावन में यमुना जी है, वृंदावन में गोवर्धन है, वृंदावन में गाय है, वृंदावन में ब्रज की धूली है। उस ब्रज में हम लोग जाना चाहेंगे, और कृष्ण वहां पे क्या है, गोप वेश में है, वहां मर्यादा में नहीं है, और तो और श्रील रूप गोस्वामी ललित माधव में वर्णन कर रहे हैं कहां पर, द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ शैया में लेटे हुए हैं और गोपी गोपी का स्मरण कर रहे हैं। रुक्मिणी जी हैरान है देखकर कि द्वारकाधीश यहां पर देखिए इतने ऐश्वर्य में लेटे हुए, यहां रहकर भी ब्रज का स्मरण हो रहा है, लेकिन ब्रज में रहकर तो कभी महिषियों का स्मरण नहीं किया कृष्ण ने, बताइए किया कभी नहीं किया। कभी आप देखते हैं कि वृंदावन की लीला में कृष्ण जो है बोल रहे हैं महिषी महिषी या रुक्मिणी बोल रहे हैं या चंद्रावर और सत्यभामा बोल रहे हैं, कभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो है द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ एक ही शैया में लेटे हैं फिर भी गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। यह है ब्रज की महिमा, यह है गोपियों के प्रेम की महिमा जिसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती है। गोपियों के महाभाव की महिमा, महाभाव केवल गोपियों में पाया जाता है, द्वारका की महिषियों में नहीं। ये ब्रज का भाव है और इस ब्रज के भाव से जो है जगन्नाथ जी के रथ को खींचा जाता है। तो इस प्रकार वहां सब कुछ है, मोर पंख है, यहां पर द्वारका में कुछ भी नहीं है, मोर पंख भी नहीं है, बांसुरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई बार हम पेंटिंग्स में देखते हैं कि महाविष्णु को भी मोर पंख लगा देते हैं हम, है ना, या भगवान के कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, विष्णु अवतार हैं, उनको भी मोर पंख लगाते हैं। वास्तव में कोई मोर पंख नहीं होते, केवल आइडेंटिफिकेशन है कि ये कृष्ण की विस्तार है, इस वजह से ये पेंटिंग प्रभुपाद ने अप्रूव किया। लेकिन तो तत्व में जो है वहां मोर पंख होता नहीं है, द्वारका में भी मोर पंख नहीं है, वहां पर भी मुरली नहीं है। तो कई बार पूछते हैं कि लेकिन रुक्मिणी द्वारकाधीश के जो तो वहां पर जो लॉस एंजलिस में है उसमें तो मोर पंख भी है बांसुरी भी है, ये क्या? तो यही तो भाव है, क्यों? क्योंकि जो उत्तम वैष्णव है जो महाभागवत है वो सर्वत्र अपने ईष्ट का दर्शन करता है। वो अगर द्वारकाधीश को भी देखेगा तो श्याम सुंदर का दर्शन करेगा, जगन्नाथ जी को भी देखेगा तो श्याम सुंदर का दर्शन करेगा। इसको कहते हैं ब्रज का भाव। ब्रज का भाव, ब्रज का प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, ये प्रेम होता है कि सर्वत्र अपने प्रेमी को, अपने प्रियतम को एक शुद्ध भक्त जो है देखता है, अपने इष्ट को देखता है। सर्वत्र इष्ट देव होए वे स्फूर्ति, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। रुक्मिणी द्वारकाधीश है तो क्या हुआ, लेकिन सामने हम तो श्याम सुंदर के रूप में देखेंगे। राधा पारसार्थी हुए तो क्या हुआ, हम राधा श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे उनमें। कई बार लोग बोलते हैं नहीं प्रभुजी हम वृंदावन जा रहे हैं वहां राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, हम वृंदावन जयपुर जा रहे हैं वहां राधा गोविंद जी के दर्शन होंगे, यहां तो राधा पारसार्थी है। इसका मतलब वो फिलोसफिकली वीक है, वो समझ ही नहीं पाया गया फिलोसफी आज तक। जो भगवान के उन्नत भक्त हैं, जो वास्तव में किस फिलोसफी को समझ चुके हैं, वो राधा पारसार्थी को देखेंगे, उनमें मदन मोहन जी को देखेंगे, उनमें गोविंद देव जी को देखेंगे, उनमें गोपीनाथ जी को देखेंगे। आप सुनो इस बात, इसलिए राधा पारसार्थी वहां कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इसलिए हम द्वारका में भी रह रहे हैं, हम राधा पारसार्थी मंदिर में रह रहे हैं, फिर भी आप लोगों का स्मरण हो रहा है हमें, पंजाबी बाग राधिका रमन जी का। तो कहने का मतलब है कि यह सब चलता रहता है, विरह और मिलन जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को कहते हैं गोपी भाव। गोपी भाव है क्या? गोपी भाव यह है कि सदा कृष्ण का चिंतन करते रहना ब्रज के भाव में, है कि नहीं? तो मतलब क्या है गोपी भाव? ये भाव जो है षट गोस्वामी ने प्रकट किया मंजरी भाव के द्वारा, है ना। हे राधे ब्रज देव के हे नंद सुनो कुतः, क्या है फिर? श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुतः, घोषणता विधि सर्वदो व्रजपुरे खेदेर महाविविलो, वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को। श्रीनिवास आचार्य लिख रहे हैं, कितनी सुंदर बात की। षड गोस्वामी जो हैं वो ये नहीं कि वहां पर जो है हमेशा रासलीला का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, विरह की वेदना प्रकट कर रहे हैं, विरह का भाव प्रकट कर रहे हैं। ये वास्तव में मूल्य है, ये प्राइस है कृष्ण को प्राप्त करने का। अगर हम मूल्य नहीं चुका सकते हैं, क्या मैं सेपरेशन अगर हम डेवलप नहीं कर पाते हैं तो मिलन की संभावना कम हो जाती है फिर भक्ति में। अगर आज हमें मिलन विरह का अनुभव नहीं हो रहा है स्कॉन में रहते हुए कृष्ण से, तो फिर आगे तो कुछ करना पड़ेगा ना हमें इसके लिए। इसलिए जब हम बड़ी गंभीरता से भक्ति करते हैं, गंभीरता से सेवा करते हैं, तो क्या होगा, फिर ये विरह उत्पन्न कर पाएंगे गुरु की सेवा से। गुरु की सेवा से ये विरह का भाव जागृत होगा। तो ये जो रथयात्रा है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस रथयात्रा में जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु जब रथयात्रा कर रहे थे, इसमें 7 संकीर्तन दल थे। पहला दल था स्वरूप दामोदर जी का, जो चीफ सिंगर थे, उनके साथ थे दामोदर पंडित, नारायण पंडित, गोविंद दत्त, राघव पंडित, श्री गोविंदारन, अद्वैत आचार्य से प्रमुख नर्तक थे। प्रत्येक संकीर्तन दल में 2 मृदंग थे, श्रीवास ठाकुर का एक ग्रुप था, गंगादास पंडित, हरिदास, श्रीमान सुबानंद, श्रीराम पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु इसमें मुख्य नर्तक थे। तीसरा ग्रुप था मुकुंद का, मुकुंद जो है इसमें मुख्य गायक थे, साथ में वासुदेव थे, गोपीनाथ जी थे, मुरारी गुप्त थे, वासुदेव दत्त, श्रीकांत वल्लभ, हरिदास ठाकुर इसमें प्रमुख नर्तक थे। गोविंद घोष का चौथा, उनकी चौथी पार्टी थी, ग्रुप था, छोटा हरिदास, विष्णुदास, राघव, माधव घोष, वासुदेव घोष और वक्रेश्वर पंडित जो है सब प्रमुख नर्तक थे। और कुलीन ग्राम से एक संकीर्तन दल आया था जिसमें रामानंद और सत्यराज थे, ये प्रमुख नर्तक थे। और शांतिपुर से अद्वैत आचार्य की पार्टी आई थी जिसमें अच्युतानंद जो है प्रमुख नर्तक थे और बाकी सब गाये थे। नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर आए थे श्रीखंड से, श्रीखंड से भी गाया था ग्रुप। तो इस तरह से सात संकीर्तन दल थे, चार दल जो है जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य कर रहे थे और दाएं और बाएं एक दल थे, यानी कि छह हो गए, रथ के पीछे भी एक दल था। सात संकीर्तन इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा को बड़े सुंदर तरीके से। ये नहीं कि कोई कहीं भी गा रहा है और बीच में कोई भी आके बम्पर बजा रहा है और एकदम से किसी ने मृदंग तोड़ दिया, कोई भाग गया मृदंग छोड़ के वहीं बीच में कि आप खुद ही बजा लो, या कुछ ब्रह्मचारी जो है माताओं के उसमें चले गए, पार्टी में चले गए अपना वो जो है प्रदर्शन करने के लिए, क्षमा करिए ऐसा भी कई बार हो जाता है। यहां कोई नहीं है लेकिन ऐसे विरले होते हैं कुछ। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि संकीर्तन का जो चैतन्य महाप्रभु जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वो स्टैंडर्ड में हमें जो है संकीर्तन करना चाहिए, रथ यात्रा करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ेंगे किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया, उस भाव में हम अगर रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो रथ यात्रा में भाग लेने का भरपूर आनंद हमें आएगा। तो ये बताया गया चैतन्य रथ यात्रा में कोई अगर रथ यात्रा में भाग लेता है या रथ यात्रा का वर्णन सुनता है, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रुति फल दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ही विल अटेन श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि। और क्या बता रहे, ही विल ऑल्सो अटेन द एलिवेटेड स्टेट बाय विच ही विल हैव फर्म कन्विक्शन एंड डिवोशनल सर्विस एंड लव ऑफ गॉड। तो भक्ति में पूरा विश्वास जागृत हो जाएगा, पूरा कन्विक्शन हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा अगर आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में आप श्रवण कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है ये ब्रज का भाव प्रकट किया और उनको जो है इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे ब्रजवासी कि जो है कृष्ण बलराम जो है कृष्ण विशेष रूप से वो बैठे हैं राज सिंहासन बैठे हैं और मर्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, राजवेश में हैं, इनको कब हम ब्रज लेके जाएंगे, कब हम उनको ब्रज लेके जाएंगे, इस प्रकार का भाव जो है ब्रजवासी प्रकट कर रहे थे। जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे थे और इस प्रकार जगन्नाथ जी के रथ को ले जाया गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक भविष्यवाणी की थी, उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा कि मस्ट टेक लॉर्ड जगन्नाथ इन एन एयरप्लेन चैरियट टू ईस्ट बोर्न लंडन, देर अलालानाथ, गौड़ियानाथ एंड गोपीनाथ विल अपियर, वी मस्ट इंस्टॉल द डीटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर द वर्ल्ड, अदरवाइज देयर विल बी नो ऑस्पिशियसनेस फॉर द ह्यूमन रेस। भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाह रहे थे कि गौरता की स्थापना पूरी पृथ्वी में हो। आज प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज पृथ्वी में प्रत्येक भक्त के घर में जो है आप देखेंगे गौरताय विराजमान है। देखिए तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आज हम यहां पर मौजूद हैं और हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं और हम सब एक दूसरे से यही सहयोग मांगे, सहयोग की आशा रखें कि जब हम रथ यात्रा हो तो उत्साहपूर्वक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लें। एक दिन पहले चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में पढ़ लें अच्छी तरह से, अगले दिन अपने आप उत्साह बढ़ेगा, हम रथ यात्रा में भाग लें, है कि नहीं। क्योंकि जब हम अज्ञानता में रहते हैं, ज्ञान की जब कमी होती है तो फिर स्वाभाविक है कि हम रथ यात्रा में जाएंगे नहीं, जाएंगे ही नहीं, भाग लेने की बात तो दूसरे की बात है ना, भाग जाएंगे बल्कि वहां से। तो इस प्रकार हम लोग प्रयास करें और संकीर्तन को ठीक से ऑर्गेनाइज करें। देखिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में तो 14 मृदंग थे, यहां तो दो मृदंग होते हैं उसमें से एक, वो भी उसमें से एक टूट जाता है एक बार नहीं, या कोई उठा के ले जाता है, करताल गायब हो जाते हैं। तो हम लोगों को और स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी के साथ हमें क्वालिटी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा और उससे हमें विशेष जगन्नाथ जी की विशेष कृपा मिलेगी। जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है। और तो और ये भी बताया गया कि इस तरह से हमें जगन्नाथ जी का प्रसाद भी वितरण करना चाहिए, उत्सव बनाना चाहिए, इसको डोल यात्रा भी कहते हैं। और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में आज आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो कम से कम 10 लाख लोग जो हैं वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ को खींचने के लिए तैयार खड़े हैं। है ना, कितना उत्साह होता है उनके अंदर। तो हम सभी इसी प्रकार का उत्साह प्रदर्शन करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ जी,
क्लास के लिए बहुत सुंदर क्लास।
हरे कृष्ण।
भैया आपने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रभुपाद पॉपर में लिख रहे हैं कि लीडर ऑफ गौड़ीय वैष्णव जो है वो स्वरूप दामोदर, जैसे हम लोग सुनते हैं कि हम रूप अनुगत हैं, हमारे लीडर तो इसको कैसे समझे, मुझे ये क्वेश्चन।
स्वरूप दामोदर के हम लोग अनुगत हैं, हम कई बार सुनते हैं रूप गोस्वामी के अनुगत, तो स्वरूप दामोदर ललिता सखी है और रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, रूप मंजरी चीफ असिस्टेंट है ललिता सखी। तो आप रूपानुग हो जाइए तो फिर स्वरूप गोस्वामी के अपने आप अनुगत हो जाएंगे आप, क्योंकि ललिता सखी के कैंप में ही है रूप मंत्री चीफ असिस्टेंट। ठीक है, स्वरूप दामोदर के भाव में और रूप गोस्वामी के भाव में कोई भेद नहीं है, दोनों ही राधा रानी के अंतरंग भाव को समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है,
और मुझे एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे हालांकि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, दे आर सेम, जगन्नाथपुरी या मायापुर या फिर वृंदावन, दे आर ऑल सेम, बट कभी कभी जैसे हम अलग स्पीकर जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है ये धाम जो है ग्लोरीज है, ये ज्यादा सुपीरियर है, ऐसे पर होता है, तो ऐसा कुछ है मुझे या फिर उसे कैसे लेना चाहिए?
देखिए, अपने आप में सभी भक्त जो है अपने अपने रसों का पूर्ण आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी देखिए वो कंप्लीट प्लेस है, इन द सेंस हर तरह के भक्तों के लिए जगन्नाथपुरी जो है सुलभ स्थान, कोई मर्यादा में है, कोई ऐश्वर्य का ज्ञान रख रहा है तो वो भी जगन्नाथपुरी जा सकता है, कोई माधुर्य भाव में है या ब्रज के भाव में वो भी जगन्नाथपुरी का लाभ पूरा लाभ उठा सकता है। जगन्नाथपुरी अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, माधुर्य ऐश्वर्य का दोनों का वहां पर आप समावेश देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन नवदीप में तो औदार्य रस है, माधुर्य रस की प्रधानता है। नवदीप जो है हमें ब्रज का ब्रज से बिल्कुल अभिन्न है, जगन्नाथपुरी द्वारका और कुरुक्षेत्र का भाव वहां प्रकट होता है। तो ये तो बेसिकली अपने अपने भाव के अनुसार है, जो जिस भाव में है उसको उतना पूरा लाभ मिल रहा है, पूरा आनंद मिल रहा है। तो जब ग्रेडेशंस किए जाते हैं बेसिकली रस के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन अपने आप में रस अपने आप में पूर्ण है। हनुमान जी कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रज में निवास करें, वो राम के साथ ही प्रसन्न है, वो अपने आप में श्रेष्ठ है दास रस। ठीक, तत्व में कोई भेद नहीं है लेकिन भाव में भेद है, रस में भेद है।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताया रथ यात्रा का असली अर्थ है विरह के भाव को उत्पन्न करना। तो चैतन्य महाप्रभु को पूर्णतम माना जाता है नवद्वीप में निमाई पंडित के रूप में, एक ढंग से देखा जाए, लेकिन महाप्रभु ने अपनी जो अंतरंग इच्छाएं थी वो पूरी तो जगन्नाथपुरी में ही की थी, तो उनकी जो इच्छाएं अंतरंग इच्छाएं पूर्ण हुई जगन्नाथपुरी में अपने अंतरंग वासनाओं के साथ, तो फिर निमाई पंडित को पूर्णतम क्यों माना जाता है?
देखिए, एक तो होता है नैमित्तिक लीला और एक होती है नित्य लीला। चैतन्य महापुरुष जो भाव प्रकट किया जगन्नाथपुरी में, देखिए हमने पहले ही बताया था जगन्नाथपुरी है साधना का स्थान, जहां पर विप्रलंब भाव जागृत किया जाता है नवदीप में प्रवेश करने के लिए या ब्रज में प्रवेश करने के लिए। और नवदीप स्थान जो है वो क्या है, औदार्य का स्थान है, माधुर्य का स्थान है। लेकिन कई बार नैमित्तिक लीलाएं होती है, निमाई पंडित के रूप में भी चैतन्य महापुरुष नजर आते हैं, वो नैमित्तिक लीलाएं हैं जहां पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जो औदार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण भाव है नवदीप का। लेकिन जिस पृथ्वी में आते हैं तो पहले वो ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हाँ कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन श्रीपाद ईश्वरपुरी के संपर्क में आकर फिर वो स्वरूप दामोदर रामंद राय, वहां पर भी नवदीप में भी स्वरूप दामोदर और रामंद राय के, रामंद राय ने क्षमा करी, स्वरूप दामोदर गदाधर पंडित के संपर्क में है श्री चैतन्य महापुरुष और अपने भाव का पोषण कर रहे हैं। तो ये सब नैमित्तिक लीला है जिसमें जगन्नाथपुरी में जाकर वो अपनी साधना को परिपक्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो तो है तो नवदीप में, नवदीप में अपने आप में पूर्ण है। इसलिए नवदीप के निमाई का हम लोग आराधना करते हैं, संन्यास वेश का नहीं। हमारे किसी मंदिर में सन्यास वेश का विग्रह नहीं मिलेगा आपको। गौड़िया वैष्णव नहीं, सन्यास वे, वे, जो वेश का जो है वो नहीं स्थापना करते हैं, क्योंकि इसमें विरह है। भक्त कभी नहीं चाहेगा कि कृष्ण को विरह में देखे, भक्त सदैव चाहेगा कि कृष्ण को हमेशा मिलन में देखे। हम बोलेंगे जी विरह सर्वोच्च है, सर्वोच्च भाव है, हम राधिका रमण जी को अलग कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, राधा रानी को इधर ऑल्टर बिठा देते हैं, कृष्ण को यहां बिठा देते हैं, विरह हो रहा है जी, हम बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो भक्त का तो आनंद यह है कि राधिका रमण जी एक ही साथ रहे और एक ही सिंहासन में खड़े हो जाए, थोड़ा सा भी गैप ना हो। पहले बहुत सारा गैप था, आपने एक ही सिंहासन में बिठा दिया उनको। ये भक्तों का भाव है, भक्त हमेशा चाहेंगे कि राधा कृष्ण का मिलन हो, ये भक्त का भाव होता है। भक्त कभी नहीं चाहेगा राधा कृष्ण अलग हो जाए। लेकिन साधना में विरह की जब भावना भक्त प्रकट करता है तो उस भक्त को राधा कृष्ण से मिलन की जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। ये भाव है तो जगन्नाथपुरी उसके लिए, उस भाव को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये भाव नहीं है कि मैं विरह का भाव डेवलप कर रहा हूं तो आपको भी विरह में डालूंगा, मैं अलग हो जाओ, आप संन्यास वेश में पहन लो, अब हम उसकी पूजा करेंगे, वो साइजिया हो जाएगा फिर। तो इसलिए साइजिया लोग भी तो यही करते हैं, वो सारे भाव प्रकट करते हैं, रो रहे हैं गाय और उनके भी बाल खड़े हो रहे हैं, सब बाहर जाके बीड़ी पी रहे हैं। तो विरह की भावना का मतलब ये नहीं है कि हम उनको अलग कर दें, विरह की भावना भक्त की होती है और उस विरह से जो है उसका मिलन होता है कृष्ण से नवदीप में। ठीक, नवदीप में अष्टकाली लीला है, विश्वनाथ जी ठाकुर ने गौरांग लीला अष्टकाली लीला स्त्रोत्र लिखा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की अष्टकाली लीला है, नवदीप में है, जगन्नाथपुरी में नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री स्वरूप दामोदर श्रील शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की समवेद भक्तवृंद की बहुत प्रेमानंद।